Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2342-1050 or 2331-4444. Once again, 2342-1050 or 2331-4444. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar. Hazir hain Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. इस कार्यक्रम में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम देश विदेश की आर्थिक खबरों पर नजर डालते हैं और साथ ही बात करते हैं शेयर मार्केट्स के बारे में। दिन शनिवार का है और आज के दिन मार्केट मंत्र आपको इनवाइट करता है किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट से संबंधित हो या देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित हो। आप हमें फोन करें, अपने सवाल पूछें। टेलीफोन लाइन्स के नंबर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444। किसी भी नंबर पर फोन करें 011 एसटीडी कोड के साथ, अपने सवाल पूछें, क्योंकि हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट शरद कोहली। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका।
वार्म वेलकम शरद।
धन्यवाद हर्ष, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन।
एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश।
सेंसेक्स एडेड 522 पॉइंट्स व्हाइल निफ्टी 50 इंडेक्स रोज 0.7% during the week. The S&P 500 rose 0.9%, the Nasdaq added 0.2%, and the Dow rose 1.6% for the week. Brent futures fell more than 1.7%, and WTI futures posted 1.1% decline this week.
इस सप्ताह भी सेंसेक्स निफ्टी ने नए रिकॉर्ड बनाए। सेंसेक्स 80,893 पर पहुंचा तो निफ्टी 24,592 पर। अमरीकी बाजारों में भी तेजी, डाउ जोन्स 1.6% तो S&P लगभग 1% और नैसडैक में भी मामूली बढ़त। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट फ्यूचर 1.7% गिरा तो WTI में 1.1% की गिरावट। और साप्ताहिक शेयर बाजार कैसा रहा, हमने हेडलाइन के माध्यम से बताया कि इस सप्ताह भी बाजार में रौनक रही है, नए रिकॉर्ड सेंसेक्स निफ्टी ने छुए हैं। हम जरूर इस पर बात करेंगे क्योंकि कई सवाल इससे भी जुड़े हुए होंगे, लेकिन चूंकि दो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेहमानों को हम तवज्जो देते हैं, इसलिए सबसे पहले हम मेहमान के पास चलेंगे। विकास हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विकास, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछ सकते हैं।
सर नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और अनाउंसिंग माय नेम।
आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है विकास
जी। आई एम गुड सर।
हाँ, अब सवाल पूछ लें
सर। मेरा सवाल ये है कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है दो सेक्टर्स में
जी,
मेजरली इन रेलवे, वैगन मैन्युफैक्चरिंग एरिया, एंड कुछ कंपनी है जो क्रेन्स एंड ये सब बनाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लाइक एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैं एक नाम लेना चाहूंगा
जी। जी
सर, इस बजट जो आने वाला बजट है, इसके बाद इसके प्रोस्पेक्ट कैसे रहने वाले हैं इन दोनों सेक्टर्स के, मैं ये जानना चाह रहा था।
विकास, दोनों ही बहुत अच्छी है। आपने देखिए, कंपनी स्पेसिफिक तो हम अब बात यहां पर नहीं करते हैं, आपको शुरू में ही बता दिया जाता है, तो मैं कंपनी स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगा। और ये हम इसलिए बार बार इस बात को दोहराते हैं क्योंकि एक ही सेक्टर में हो सकता है कि मान लीजिए चार कंपनीज हैं और वो सेक्टर बहुत बूमिंग है, पर ये हो सकता है कि कोई कंपनी अच्छा करे, कोई कंपनी उसमें बुरा करे, तो इसलिए ये बात आप जहन में रखिएगा। बाकी सेक्टर्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आपने रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, जिस तरीके से रेलवेज का आधुनिकीकरण हो रहा है और रेलवे का बहुत सारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, जिसको रिप्लेस किया जा रहा है, नई ट्रेन आ रही है। और वैगन मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता होगा वंदे भारत बहुत तेजी से भारत में उसका फैलावा हो रहा है, नई नई रूट्स ढूंढे जा रहे हैं वंदे भारत के लिए। तो मुझे लगता है वैगन मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर है। रेलवे में भी आपने बहुत स्पेसिफिक बात करी, दूसरा आपने क्रेन्स की बात करी, तो जहां तक बात ये क्रेन्स इस्तेमाल होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेन्स इस्तेमाल होती है बिल्डिंग्स में, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो वहां क्रेन्स इस्तेमाल होती हैं, तो मुझे इसका भी मैं कंपनी पर तो तवज्जो नहीं दूंगा हमारे नियम अनुसार, पर क्रेन्स का भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। बस ये देखिएगा कि कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है, कंपनी की जो प्रोमोटर्स कैसे हैं और कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ा सा विकास मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसको अगर रीड कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसको थोड़ा सा आप रीड करना सीख लें, उससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। क्योंकि उसमें थोड़ा हम लोग तीन चार चीजें देखते हैं, डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं, पीई देखते हैं, कंपनी की बुक वैल्यू देखते हैं और भी बहुत तकनीकी बातें। मुझे नहीं पता आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या किस बैकग्राउंड से हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस शीट रीड करना सीख लें तो आप इसको और बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। बाकी सेक्टर्स दोनों ही अव्वल नंबर के हैं, मेरे जो टॉप ऑफ द लिस्ट सेक्टर्स हैं उनमें ये दो सेक्टर्स का नाम है, तो बहुत अच्छा आपने चयन किया हुआ है। पर कंपनी स्पेसिफिक यहां पर राइडर में डालना चाहूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं दोहराना चाहूंगा सभी श्रोताओं के लिए है, एक ही सेक्टर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसमें ऐसा हो सकता है पांच कंपनी है पर एक दो कंपनी अच्छा कर रही है, एक दो अच्छा नहीं कर रही है, अब ये कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है, बाकी सेक्टर बहुत बढ़िया। आपको
वॉल्यूम कोई मतलब रखता है अगर देखा जाए किस कंपनी का कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है?
हाँ, मैंने बैलेंस शीट का जिक्र किया तो बैलेंस शीट में तो हम ये सब चीजें देखते ही हैं, पीई। इनफैक्ट जब पीई आप निकालते हैं तो पहले कंपनी का ईपीएस निकालते हैं जिसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं, और अर्निंग पर शेयर तो हर वॉल्यूम रेवेन्यू से ही आता है, बल्कि रेवेन्यू से भी आगे प्रॉफिट से निकल के आता है, तो इसलिए जब ईपीएस निकालते हैं तो समझ लीजिए आपने संतरे लिए और उसका जूस निकाल लिया,
जूस निकाल
तो सारे संतरों के गुण आपने अपने अंदर ले लिए, तो मैंने ईपीएस को जूस की तरह से जिक्र किया। बाकी पर बिल्कुल ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉस्ट ब्लॉक ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो ये सब मैंने थोड़ा सा संक्षेप में उसको बता दिया।
जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली इज आर एस धैया, अ वार्म वेलकम मिस्टर धैया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
सर नमस्कार, तो मार्केट मंत्रा के
जी नमस्कार,
आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, प्लीज डोंट डिस्कनेक्ट माय फोन। द क्वेश्चन इज दैट इज पीएमएस ऑपरेटर्स और इन्वेस्टर मैनेजमेंट इज बीइंग प्रॉपरली कंट्रोल्ड रेगुलेटेड बाय सेबी, आर दे रजिस्टर्ड, आर द कस्टमर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय सेबी, एंड इट इज सेफ टू इन्वेस्ट इन पीएमएस, and is the performance or return of PMS is better than the mutual fund schemes?
Mr. Daya, very good question, I must say, because a lot of people compare mutual funds with the portfolio management services. PMS here means portfolio management services. Yes, Mr. Daya, they are very, very, very strictly monitored. Each portfolio manager has to register. There is a basic criterion on the basis of which you are given a PMS license. The minimum amount that you can put in a PMS, you must be knowing, is 50 lakhs. So they cannot take very small size contributions, and each PMS is required to have a research team. They monitor all the stocks. In fact, each PMS gives you a deck which comes on your system or phone where you can monitor the stocks being invested by them. So I won't say that all PMSs may be doing great, but then as far as comparison with mutual fund is concerned, yes, because PMS is direct investment into stocks. Basically what they do is when you put your money, they divide it into a portfolio of stocks directly, whereas mutual fund is a collective fund accumulation, and then they put it on that basis. So you don't know in which companies they have invested. They tell you the sector, the small cap, mid cap. Some mutual funds also come out, but PMS is one step ahead. So I would say PMS is between your choosing the stock yourself or mutual funds. So it is somewhere in between where you leave it to a team of experts, portfolio managers. And the best way, Mr. Dhaiya, is because it's a very, very relevant question to all the listeners, that the best way is that keep monitoring the desk. I have seen a lot of PMS investors who just give the money and thereafter they don't monitor it. So you should keep monitoring. The returns at PMS over the last couple of years, touch wood, have been very good. But then keep in mind that you are exposed to market risk, because if tomorrow market goes down, you cannot blame the PMS guy. Although the choice of companies in PMS, those researchers, they pick the companies very, very carefully, and you know they do extensive research on those companies, especially fundamental analysis. So the choice is good. They've got experts, very highly paid experts. But you must, Mr. Dhaiya, also monitor from time to time. I would say every 15 days to 1 month, you must check the stocks for your own knowledge. You are a very, very veteran and experienced, investor and an economic, you follow the economic news very carefully. So I would suggest that you should monitor yourself, and PMSs definitely can turn out to be better than mutual funds, but then exposed to market risk more than the mutual funds.
K.K. Sinha from Faridabad joins us now. A warm welcome.
Hi. Yes, Market Mazla Jin, namaskar.
Ji, sawal puche.
Boli sahab ko namaskar.
Namaskar Sinha sahab.
Sir, mera question ye hai ki mera portfolio mein jo bhi share hai.
Ji.
Suppose kiya jaye ki 50 lakh ka share hai.
Ji.
To ye kitna surakshit hai? Aur agar isme koi fraud ho sakta hai to kaisa fraud ho sakta hai? और ये अपने जो भी शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है इसका लिस्ट कहाँ पे हमको मिलेगा कि किसी ब्रोकर के बंद होने के बाद
जी.
ये हम मतलब चलना चाहते हैं कि हम हाउ कैन आई मॉनिटर आवर शेयर.
सना साहब बहुत अच्छा सवाल है और ये गलती आज तो ऐसे सवाल आ रहे हैं राजेश और हर्ष जो कि मुझे लगता है सारे के सारे लिसनर्स के लिए बहुत ही निहायत काम के अभी तक दो तीन सवाल आए हैं सारे ही सवाल बहुत उम्दा हैं. सना साहब देखिए एक तो आपको करना क्या है कि आपको अपने डीमैट अकाउंट को समय समय पर चेक करना है. एक गलती जो सब शेयर होल्डर्स करते हैं इन्वेस्टर्स करते हैं कि एक दफे डीमैट में डाल दिए और मान लीजिए वो शेयर आपने ज्यादा ट्रेड नहीं करना है खरीद फरोख्त नहीं करना है तो उसको आप डाल के छोड़ देते हैं. वो मैंने देखा है साल साल दो दो साल तक फिर उसकी तरफ देखते नहीं भाई हमारे पास तो पड़े हुए हैं. तो एक तो आपने उसको मॉनिटर करते रहना. जहां तक बात है कि फ्रॉड होने से कैसे बच सकता है या आपके शेयर बिल्कुल सुरक्षित हैं क्योंकि डीमैट अकाउंट आपको पता होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी जिसको बोलते हैं जिस भी ब्रोकर के साथ आपने खुलाया उसके पास डीपी का लाइसेंस होता है और ये एनएसडीएल इसको कंट्रोल करता है और एनएसडीएल के पास बाकायदा इन डीपीज को आपके शेयर्स के बारे में रिपोर्ट करना होता है समय समय पर और आपसे चार्जेस भी लिए जाते हैं. आपको पता होगा डीपी आपके चार्जेस भी लेता है तो शेयर्स सिक्योर हैं कोई फ्रॉड ऐसा होने का चांस नहीं है. कभी पीछे सुनने में आया था एक कंपनी ने हम यहां नाम नहीं लेते कंपनी ने वो शेयर्स उठा के प्लेज करके और उसके अगेंस्ट लोन वोन उठा लिया था ये कर लिया था पर जब से वो हुआ है किस्सा उसके बाद से एनएसडीएल ने इसकी मॉनिटरिंग और स्ट्रांग कर दी है. पर फिर भी सिन्हा साहब क्योंकि आपका एप्रिहेंशन है बहुत ही दुरुस्त और बहुत रेलिवेंट सवाल है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको समय समय पर चेक करते रहें अपने पोर्टफोलियो को और कहीं भी आपको कोई इरेगुलरिटी दिखाई दे या आपको संशय हो तो आप तुरंत उस डीपी से संपर्क करें. पर से इसमें ऐसा कोई रिस्क मुझे नजर नहीं आता है. जी.
भारत भूषण हमारे साथ हैं दिल्ली से ही. भारत जी क्या सवाल है आपका?
जी सर सबको नमस्कार.
नमस्कार.
नमस्कार
सिन्हा सर. सरल सर से मेरा प्रश्न ये है सर
जी
कि जो अभी हाल ही दिनों में भारत रूस द्विपक्षीय वार्ता हुई है सर
जी
तो किन किन अहम मुद्दों पे हमारे देश के दृष्टिकोण से हमें अच्छा है और दूसरी चीज सर कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए हैं सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है सर परंतु हमारे पास गेहूं और धान के तो बफर स्टॉक बहुत हो जाते हैं सर लेकिन जो दलहन और तिलहन है वो अभी भी हम आयात कराते हैं जबकि हम कृषि प्रधान देश अपने आप को कहते हैं कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था है तो ये कब तक चलेगा सर इम्पोर्ट कब तक होगा? धन्यवाद.
भारत भूषण जी आपका पहला सवाल था कि रशिया में कैसा रहा और किन मुद्दों पर बात हुई सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे बात हुई डिफेंस पे बात हुई डिफेंस इंपोर्ट्स पे बात हुई रूपी रूबल ट्रेड पर बात हुई. भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत हमेशा पीस का एम्बेसडर रहा है. भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा आपने सुना होगा कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है बगैर नाम लिए उन्होंने ये भी एक हिदायत दी कि भाई इस युद्ध को भी जितनी जल्दी समाप्त हो सके करना चाहिए. म्यूचुअल बायलेटरल ट्रेड पर बात हुई और मुझे लगता है रशियन इन्वेस्टर्स को प्रधानमंत्री जी ने एक रेड कार्पेट बिछाया कि आप भारत में आके इन्वेस्ट करिए इतनी बड़ी भारत मार्केट है तो उसमें इन्वेस्ट करिए. बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई और मुझे लगता है इस बातचीत के परिणाम दूरगामी होने वाले हैं. बहुत लंबे वक्त तक ये ट्रिप याद रखा जाएगा और जो जो भी इसमें असल में होता क्या है कि दो राजनीतिज्ञ जब मिलते हैं देश के हेड्स तो वो आपस में बात कर लेते हैं पर जनता तक उसका लाभ पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय लगता है. अब डिसीजन वहां हुआ है धीरे धीरे वो ब्यूरोक्रेसी में जाता है उसको एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको डिक्लेरेशन बोलते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी हुई थी. आपका दूसरा सवाल था कि बिल्कुल खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो गए. तिलहन और दलहन की आपने बात करी. देखिए ये आप क्योंकि भारत भूषण जी मैं जानता हूं आप कहीं ना कहीं किसानी का बैकग्राउंड रखते हैं तो मुझे लगता है हमारे किसान भाई जो मुझे इस समय सुन रहे हैं उन तक भी मैं संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि वो भी खाली गेहूं और चावल तक अपनी खेती को सीमित ना रखें. आप कमर्शियल क्रॉप्स में जा सकते हैं आप दलहन तो ये तो हमारे किसान भाई जहां जहां मौसम और वहां की जो मिट्टी है वो अगर आपको अलाउ करती है दलहन तिलहन को उगाने की, मुझे लगता है किसानी हमें जब आदत पड़ गई है कि हमें धान उगाना है और हमें खाली गेहूं उगाना है, तो हमें ऐसी आदत पड़ी होती है हम दूसरी तरफ देखते ही नहीं है, हमारी सारी की सारी सोच वहीं पर रह जाती है।
जबकि
बिल्कुल, और इतने सारे क्रॉप्स हैं उगाने के, इतने महंगे महंगे क्रॉप्स हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप देश में केसर उगा दीजिए क्योंकि ना तो मौसम सपोर्ट करता ना मिट्टी, पर बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, दलहन तिलहन की आपने बात करी, तो ये तो मुझे लगता है कि किसानों के हाथ में है भारत भूषण जी। और सरकार तो निरंतर प्रयास करती रहती है, कृषि मंत्रालय निरंतर प्रयास करता है किसानों को इस बात के लिए अवगत कराने का कि आप दूसरे क्रॉप्स पर भी जाइए। तो जैसे जैसे किसान इस बात का एहसास करेंगे वैसे वैसे हम उसमें भी आत्मनिर्भर होते जाएंगे। तब तक के लिए जितनी जरूरत है, अब तिलहन खाना है, दलहन भी खाना है, तो जहां जितना मंगाना पड़ता है वो मंगाना पड़ता है। भारत भूषण जी आपके लिए तो बहुत आसान है इस सवाल का जवाब ढूंढना। जी
कुश हैं हमारे साथ रायगढ़ से, कुश जल्दी से सवाल पूछ लें।
जी नमस्कार सर, सत्तर को मेरा नमस्कार।
हाँ नमस्कार कुश।
सर मेरा दो सवाल है, पहला सवाल ये है कि अगर हम शेयर किसी को गिफ्ट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं और क्या उसके लिए कोई अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं क्या?
जी,
और दूसरा मेरा एक सजेशन चाहिए था इंट्राडे के लिए।
जी नहीं, इंट्राडे के लिए क्या सजेशन? एनीवे देखिए, पहला आपका शेयर गिफ्ट करना बहुत आसान है कुश। जो गिफ्ट कर रहा है जो व्यक्ति और जिसको गिफ्ट किया जा रहा है, दोनों का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एक आपको ट्रांसफर या रिलीफ स्लिप दी जाती है, वो आप स्लिप साइन करें, आप अपने डीपी को दें और तुरंत एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और उस पर जब आप ट्रांजैक्ट करते हैं तो कोई ऐसे चार्जेस नहीं है, जो डीपी के नॉर्मल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। एसटीटी जो ट्रांजेक्शन टैक्स है वो लगता है जब आप खरीद बेच करते हैं, गिफ्टिंग में कोई ऐसा टैक्स नहीं। आपको जो नॉर्मल डीपी आपके चार्जेस लगाएगा, अलग अलग डीपी अलग अलग अपने लिए, जो आप कॉल टू एक्शन हम इसको कहते हैं, आप कुछ एक्शन करते हैं तो वो चार्जेस लगाते हैं। दूसरा आपने थोड़ा सा वेग पूछा है कि इंट्राडे के लिए आप क्या कहना, मैं तो ये कहूंगा कि इंट्राडे वही लोग करें जिनको पूरी जानकारी हो, क्योंकि लोग जानकारी नहीं करते, 10 बजे लिया, 10:15 बजे बेच दिया, 10:20 पे फिर ले लिया। और सेबी का डेटा आया है, मैं ये सभी श्रोताओं को मैं ये बिल्कुल मैं चेतावनी नहीं कहता क्योंकि हम मार्केट मंत्रा में बात मार्केट की है, पर सेबी ने स्वयं कहा है कि 85 से 90% लोग स्पेकुलेटिव बिजनेस में, इंट्राडे को हम स्पेकुलेशन, उसमें पैसा गंवाते हैं। अब अगर आप उन 10 से 15% लोगों में बन सकते हैं, देखिए कुछ ध्यान से सुनिएगा, तब तो आप इंट्राडे करिए। बड़ा सीधा साधा मैंने आसान जवाब ढूंढ लिया आपके सवाल का। और वो कौन बन सकता है? जिसको मार्केट की पूरी रिसर्च और पूरा प्रोटोकॉल, जो ज्यादातर लोग इंट्राडे में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, राजेश और हर्ष को मैं बता दूं, और ऑप्शंस बाइंग बिल्कुल आग से खेलने जैसा है अगर आपको जानकारी नहीं। ऑप्शन सेलिंग में थोड़े से प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि उसमें मार्जिन आपका फ्यूचर जितना जाता है। तो कुछ ये आप ध्यान रखिए, अगर आप 5 से 10% उन लोगों में हैं, जो कि वो कौन लोग हैं जिनको पूरी तरह से जानकारी है, जिनका रिस्क पूरे हेजिंग करके चलते हैं, स्टॉप लॉस लगाते चलते हैं, और अगर नहीं है तो 85 से 90% वो पैसे खोने के लिए तैयार हैं। मैं इंट्राडे के लिए किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वित्त मंत्रालय से भी एक संदेश आया था, सेबी से भी आया, और इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि शायद स्पेकुलेशन पे कुछ टैक्स के प्रावधान लाए जाएं। सो इसलिए बहुत सावधान नहीं, मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं राजेश, क्योंकि खून पसीने की कमाई है, मैं मानता हूं कुछ की भी खून पसीने की होगी, सभी श्रोताओं की, तो वो ऐसे खामखा एक मिनट में पता लगा लाखों रुपए हजारों रुपए हवा हवा हो गए, और कमाएं तो बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान से इसको करना चाहिए।
योगेश शर्मा फ्रॉम दिल्ली जॉइन्स अस नाउ। योगेश, अ वार्म वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
थैंक यू सो मच, आप सभी को नमस्कार।
नमस्कार
सर, मेरा सवाल है कि मुनाफा वसूली करने का सही तरीका स्टॉक में क्या है? जैसे हमने अभी बीच में स्क्वायर ऑफ करा पोजीशन, तो अगर हम प्रॉफिट समेत जिस भाव पे हमने बेचा है उससे 1-2 रुपए नीचे पे खरीद लें वापस से, तो उतने नंबर ऑफ शेयर अगर हम एक्वायर कर लें दोबारा से, तो क्या ये सही तरीका है मुनाफा वसूली करने का कि हमारा कंपाउंडिंग खराब ना हो?
बिल्कुल सही तरीका है योगेश। जब मैं मुनाफा बुक करने की सलाह देता हूं, बार बार मैं वो कहावत बोलता हूं, प्रॉफिट इन द बैंक इज प्रॉफिट इन द बुक्स, तो मेरा यही मतलब होता है कि आपको जब मुनाफा हो रहा है तो आप उसको बुक करके चलिए। आपको अगर अब आपका जो दूसरा पार्ट है सवाल का, अगर आपको लगता है योगेश कि ये शेयर आगे भी मुनाफा देगा, अब ये कैसे लगता है आप कहेंगे, ये हमें कैसे पता लगेगा भाई आगे भी मुनाफा देगा? मार्केट को तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर जिस कंपनी का शेयर है उसकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप दोबारा ले सकते हैं। पर दोबारा लेने से पहले ये जरूर चेक करिए कि अभी भी इसमें जूस बाकी है कि नहीं है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट निरंतर बढ़ रहा है, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत भरी हुई है, कंपनी की बुक वैल्यू अच्छी है, कंपनी की पीई जो है बाकी की इंडस्ट्री से थोड़ी सी बेटर है, इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए, कंपनी के भविष्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्केट में झटका कभी भी लग सकता है और ये हो सकता है कि आपने पता लगा पहले तो प्रॉफिट बुक कर लिया, जब दोबारा लिया तो पहले का भी दे बैठे और भी लॉस हो गया। तो जब आप दोबारा एंटर करें तो आप ये सोच के चलिए कि आप नए सिरे से एंटर कर रहे हैं। तो नए सिरे से एंटर करने का मेरा मतलब है कि आप फिर से एक बार पूरा आकलन करिए, तब आप उसको दोबारा लीजिए। तो मेरा मुनाफा वसूली से मतलब ये होता है कि आप बुक करके और दोबारा लें, पर दोबारा केयरफुली उसको लें। आप और भी कोई शेयर ले सकते हैं दोबारा लेने के लिए, उस सेक्टर का कोई दूसरा ले सकते हैं, किसी और सेक्टर का ले सकते हैं। तो ये मेरी आपको हिदायत है कि री बाइंग की या मार्केट में री एंटर करने की।
और शरद भाई देख लेते हैं कि सप्ताह शेयर मार्केट ने क्या परफॉर्म किया। इस सप्ताह भी भारतीय शेयर बाजारों में उछाल रहा। सप्ताह के दिनों में उतार चढ़ाव भरे कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। सेंसेक्स 80,893 पर रहा है, वहीं निफ्टी 24,592 पर रहा। बीएसई लार्ज कैप में 0.65% की बढ़ोतरी रही, वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप भी बढ़े। तो कुल मिलाकर जो मार्केट में एक तेजी का दौर चल रहा है, अब लगता है कि जल्दी ही 80 के बाद सेंसेक्स 90 पे और निफ्टी 30 तक तो पहुंच ही जाएगा।
जी हाँ हर्ष, मुझे पतंग की तरह लग रहा है ये, जिसकी डोर बस ढीली छोड़े और ऊंचाई ऊंचा जीता जा रहा है। पर बहुत ऊंची जब पतंग जाती है तो थोड़ी सी दिखनी भी कम हो जाती है और उसके हाथ से बाहर जाने का भी डर होता है। तो सतर्कता यहां पर बरतनी जरूरी है। मुनाफा कमाइए, मार्केट को एंजॉय करिए, पर साथ में केयरफुल रहिए, क्योंकि अगर करवट बदली या अगर वो कहीं करेक्शन आई तो जो लोग चढ़ती पतंग में चढ़ते हैं वो थोड़ा सा अपना ध्यान से करना चाहिए।
बिल्कुल।
वॉल स्ट्रीट क्लोज हायर ऑन फ्राइडे विद द S&P 500 एंड डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हिटिंग इंट्राडे रिकॉर्ड हाइज ऑन बेट्स दैट द US फेडरल रिजर्व विल कट इंटरेस्ट रेट्स इन सितंबर व्हाइल बिग बैंक्स फेल आफ्टर रिपोर्टिंग मिक्स्ड रिजल्ट्स। S&P 500 climbed 0.5%. NASDAQ gained 0.6%, while Dow Jones Industrial Average rose 0.6%. For the week, the S&P 500 rose 0.9%, and NASDAQ added 0.2%, and the Dow rose 1.6%.
Girdhari Lal Ji, Mumbai se jod chuke hain. Girdhari Lal Ji, bahut bahut swagat. Kya sawal hai?
Namaskar Ji, Kohli Saab ko.
Namaskar Girdhari Lal Ji.
सर जी, मेरा एक छोटा सवाल है बैंक से संबंधित है, लॉकर से।
जी
सर जी, 89 में मेरा मिसेज ने मेरी एफएम में लॉकर खोला था
जी,
और वो जो अभी चाबी भी उसके पास है एंड वो अभी तक गुमशुदा है।
कौन, आपकी पत्नी?
हाँ जी, मेरी मिसेज।
ओहो जी, तो अब मतलब चाबी उनके पास है और वो गुमशुदा है।
तो गुमशुदा रहती हूँ, तो मैंने बहुत उसको सर्च किया लेकिन कल आपका लापता है, कोई जाता पता नहीं है कुछ भी।
हमें बहुत अफसोस है गिरधारी लाल जी, नॉर्मली चाबी खोती है पर यहाँ पर उनकी इनकी मिसेज गुमशुदा है। तो आप इसमें गिरधारी लाल जी ये कर सकते हैं कि आप बैंक के पास जाएं और एक पूरा प्रोसेस होता है गिरधारी लाल जी डुप्लीकेट चाबी बनाने का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि जो कंपनी लॉकर को लगाती है केवल उसी कंपनी के पास ये अधिकार होता है। तो उसमें मैनेजर की सुपरविजन में उसको अपॉइंट किया जाता है और वो आएंगे दोबारा डुप्लीकेट चाबी बनाएंगे, आपसे कुछ कागजी कार्रवाई करवाएंगे, उसमें एक एफिडेविट देना होता है, एक बैंक का फॉर्म होता है और FIR भी जो आपकी धर्मपत्नी जो आपने FIR कराई होगी, और मेरे कुछ सालों बाद जो गुमशुदा व्यक्ति होता है उसमें एक फाइनल रिपोर्ट भी जारी होती है। मैं उस तह में नहीं जाना चाहता, पर आप बैंक के पास जाके गिरधारी लाल जी मिलिए, हमें बहुत अफसोस है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी धर्मपत्नी आपको जल्दी मिले और साथ में फिर लॉकर की कार्रवाई आप उससे पहले कर सकते हैं।
फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय केशव, वार्म वेलकम केशव।
नमस्कार जी।
जी सवाल पूछे।
सरोज जी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार केशव जी।
सर ऐसा है, सीनियर सिटीजन की आ चुके
जी,
और ये FDA भी मैच्योर हो गई जुलाई में
जी,
जुलाई को
जी।
अब हमें ये रास्ता दिए कि वो FDA ही रोने पर नहीं, क्या सीनियर सिटीजन की कोई और भी बेनिफिट है उसमें जाए, क्योंकि शेयर मार्केट में कभी उनको ज्ञान नहीं है तो इसलिए वो शेयर मार्केट में इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि जानकारी नहीं होने से वहां जाने में उनका कोई मूड नहीं बनता कि क्या करा जाए।
बिल्कुल ठीक है केशव जी, जब शेयर मार्केट की पूरी जानकारी नहीं हो तो उस टेरिटरी में जाना नहीं चाहिए, और जब तक पूरी जानकारी ना आ जाए। देखिए सीनियर सिटीजन वो हो गए हैं तो उनको सीनियर सिटीजन की पहले तो FD का रेट आप देखिएगा, जो आपने FD कराई हुई थी, सीनियर सिटीजन को ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी उस बढ़े हुए इंटरेस्ट का अवेल कर रहे हैं, नहीं तो आप FD को दोबारा कराएं और बैंक को बताएं कि आप सीनियर सिटीजन हो गए, तो आप पहले तो आप FD का जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिवाइज कर देंगे। इसके अलावा आप जा सकते हैं केशव जी, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं, क्योंकि वो शेयर मार्केट को सीधा सीधा नहीं है, वो शेयर मार्केट ऐसा, मैं म्यूचुअल फंड का बड़ा अच्छा मैंने नाम दिया है, एक तरीका है कि आप ठंडे पानी में सीधा हाथ डाल दें, एक घड़े में ठंडा पानी डाल दें और घड़े को बाहर से छूएं तो आपको ठंडक आती रहती है, तो आपको शेयर मार्केट की ठंडक या गर्मी जो भी आप कहते हैं वो आती रहेगी, और सीधा भी आप उसमें हाथ आपका जलेगा नहीं, एकदम चिल नहीं हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स जो खासकर जो हाइब्रिड हैं वो आप दे सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा डेट कंपोनेंट भी है, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको किसी, या तो म्यूचुअल फंड के कोई आपके इर्द गिर्द कोई एक्सपर्ट हो आप उनसे, क्योंकि हम यहां म्यूचुअल फंड का संडे को एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है, आप ये भी कर सकते हैं कि कल यानी एतवार को आप फोन करें तो एक म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट होंगे जो आपको कुछ म्यूचुअल फंड के नाम भी बताएंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। एक मैं म्यूचुअल फंड सलाह दूंगा, कुछ मैं सलाह दूंगा केशव जी के वो पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स में ट्राई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, MIS है, बहुत ही सुरक्षित है, सॉवरेन गारंटी होती है उसके पीछे। तो क्योंकि अब इस उम्र में राजेश हर्ष आप मानेंगे कि इस उम्र में आप सुरक्षित निवेश में रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी सी कम होनी चाहिए, हो जाती नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि पैसा वो आपके बाकी की जिंदगी में रिटायरमेंट में काम आने वाला है, तो थोड़ा सा सुरक्षित चलना चाहिए। तो मैंने जो आपको तरीका बताया आप करिए, और केशव जी हमें बताइएगा अगर आपने कहां इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप जो बताएंगे हमें तो हमें औरों को भी गाइड करने में आसानी रहेगा कि आपके फादर साहब को कितनी प्रसन्नता हुई, कैसा रिटर्न आ रहा है। मेरे ख्याल अच्छा लगता है सुनकर।
तो पोस्ट ऑफिस में तो ज्यादा आजकल डिपॉजिट भी कर सकते हैं।
जी, जितना मर्जी डिपॉजिट कर सकते हैं आप, कोई उसमें लिमिट नहीं है।
आर नाथ फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ, अ वार्म वेलकम।
आपको नमस्कार
जी,
मेरा
I think you need to get to a secure or place where we can, you know, get a clear reception.
आपका नेटवर्क कमजोर है जहां पर आप हैं।
Anyway, let's go to the next caller from Kolkata, Atanu Saha. A warm welcome, Atanu.
Good evening, sir. Are you Atanu from Kolkata? My first question, sir, it is what is market capitalization and what relation with GDP, gross domestic product, is? And is it true that our capital market is right now overvalued? Thank you, sir.
Market capitalization, Mr. Atanu, is the sum total of shares multiplied by the number of shares which are floating in the market. Indian market capitalization right now is over $5 trillion. We are amongst the top five market caps in the world. Well, GDP as such, there is no relation, but there was a time when GDP and market cap were running a race and they were in a photo finish. Market cap used to be around GDP, sometimes GDP used to overtake, sometimes market cap. But now, I think market cap has left the GDP far behind, although not very far behind, because we are, by the way, our GDP is close to $4 trillion now, and we are very soon going to be, in fact, some records say we are already the fourth largest now, but it's not been on record, because we need to wait for numbers to come from Japan or Germany. So therefore, there is no absolute direct correlation, but these numbers are normally, Mr. Saha, spoken together. When you speak of the health of the country, when you speak of the economic parameters, we do speak of these two numbers together, market cap and GDP. There is no direct correlation.
Oil future prices settled slightly lower on Friday as investors weighed weaker U.S. consumer sentiment against mounting hopes for a Federal Reserve rate cut in September. For the week, Brent futures fell more than 1.7% after 4 weeks of gains. WTI future posted 1.1% weekly decline. We have two callers. Unfortunately, we won't be able to take your calls. Amit from Mumbai and Jitendra from Jaipur. Thank you so much for contacting us. Do get back to us on Monday with your query and we will answer them. In the meantime, what's your outlook for the coming week?
Market is going balle balle right now, Rajesh, and the undertone is bullish. But then a word of caution here, because I think budget is the big trigger. And till such time, you can be stock specific in your approach instead of indice specific. And you can look at companies' performance and the results coming.
बिल्कुल देखते हैं, और आज के लिए इतना ही, वक्त अब खत्म हो गया है। शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने, बातचीत करने के लिए।
Thank you so much. My pleasure.
Thank you for being with us, Sharad. And before we close the headlines once again, Sensex added 522 points while Nifty 50 index rose 0.7% during the week. And for the week, the S&P 500 rose 0.9%, the Nasdaq added 0.2%, and the Dow rose 1.6%. And in the week, Brent futures fell more than 1.7%, WTI futures posted 1.1%. weekly decline. That's all we have in this edition of the Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar.
Market Mantra.